جزاك الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن کی جلد نمبر 5 ہی سے، اور یہ جو ابھی آیت تلاوت کی ہے تو اس کی ہم نے تفسیر عارف و مسائل میں سے پڑھ لی ہے، کیونکہ باقی جو آیات ہیں اس مجموعہ آیات میں سے تو ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ تفسیر سے بھی ان کی مختصر تفسیر کچھ اپنے تشریحات وغیرہ کے ساتھ جو ہم پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں. تو اب جو ہے وہ یہ والی آیات نہیں بلکہ معارف و مسائل میں سے بھی مکمل پڑھ چکے ہیں، اب تو صرف جو ہے وہ احکام و ہدایات رہ گئی ہیں ان آیات کی. تو احکام و ہدایات جو ہیں، ویسے مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ وہ کہیں کہیں کچھ آیات کے بیان فرماتے ہیں، عمومی طور پر صرف معارف و مسائل ہی ہوتے ہیں، یعنی ترجمہ ہوتا ہے آیات کا، پھر خلاصہ تفسیر ہوتی ہے، اور پھر معارف و مسائل ہوتے ہیں. یہ جو احکام اور ہدایات والی ہیڈنگ ہے نا، یہ کہیں کہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا، امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ یوسف کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت زیادہ بیان کیے ہیں، اور اکثر مجموعہ آیات کے آخر میں احکام و ہدایات کی ہیڈنگ جو ہے نا وہ رکھی ہے، ورنہ اور جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں سے کچھ ایسی ہدایات ہمیں مل رہی ہیں جو کہ شاید زیادہ ہم سے ریلیونس رکھتی ہوں. تو کیا خیال ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کی کیا ایک وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے، کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے، یا کیا ایک وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کے بہت سارے آیات کے یہ تفسیر میں معارف و مسائل کے بعد احکام اور ہدایات کی ایکسٹرا ہیڈنگ ایڈ کریے، حالانکہ قرآن مجید کے دوسرے جگہوں پر ایسا نہیں کیا، بس معارف و مسائل تک ہی بات کریے. ٹھیک، امید ہے میں اپنا سوال ذرا صحیح طرح سے پریزنٹ کر سکا ہوں گا. تو کیا وجہ بن سکتی ہے اس کی، یا آپ سمجھ میں آتی ہے کہ احکام و ہدایات سورہ یوسف میں کیوں خاص کر کے رکھے ہیں حضرت نے، جبکہ دوسری جگہوں پہ نہیں رکھے ہیں؟ دوسری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل تو خواتین کے اندر چلی رہی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، بس خلاصہ تفسیر ہوتی ہے، معارف و مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے، آیات آ جاتی ہیں، ہر جگہ ایسے ہی ہے. احکام و ہدایات نہیں ہے، یہاں پہ اثر کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیکاز اٹ از فار فیملی. اچھا، بیکاز اٹ از فار فیملی. فیملی تو چلے ٹھیک ہے، چلے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے ہم نے آپ کا جواب سن لیا، آگے چلیں دوسروں کا جواب بھی سن لیتے ہیں. انہوں نے لکھا اٹ از مور ریلیونٹ ٹو آور ٹائمس. اچھا، کون سی ایسی ریلیونس آپ کو آور ٹائمس کی اس میں نظر آ رہی ہے؟ بہرحال اور بتائیں، کوئی اور بتائے. اصل میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی پہلے ہماری ڈسکشنز میں اس کا جواب آ چکا ہے، اگرچہ کہ ایسا سوال نہیں تھا لیکن جواب ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. अल्लाह ने अभी अभी दिल में डाला है तो आपसे पूछ भी लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपकी इंटरेक्शन भी, इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए क्लास के अंदर। ज्यादातर कुरान में इजमाली जिक्र है हर चीज का, सूरह यूसुफ का के किस्से में तफसील है। चले, ये एक फर्क तो है दूसरे किस्सों में और सूरह यूसुफ के किस्से में, ठीक है। तो अच्छा, सूरह यूसुफ के किस्से के अंदर जो है ना वो तफसील है, एक ही किस्सा एक ही जगह पे इतनी तफसील के साथ, और कोई नहीं है। इवन मूसा अलैहिस्सलाम के जो किस्से हैं ना वो बिखरे हुए हैं पूरे पूरे कुरान के अंदर, और वो पोर्शंस के अंदर हैं। कहीं कोई पोर्शन का जिक्र होता है, कहीं किसी मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किसी वाले जगह का टाइम का जिक्र होता है, कहीं किसी और टाइम का जिक्र होता है, कहीं किसी और टाइम का जिक्र होता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू से लेकर के आखिर तक इस एक सूरत के अंदर है। तो ये एक मेजर फर्क तो ये है, लेकिन क्या ये वजह है कि अहकाम हिदायात इसमें, या कोई और वजह है? और बताएं, पुराने करीम के मुताबिक ये बेहतरीन किस्सा है जिसमें सारी तफसील से इंसान पर गुजरने वाले हालात हैं। अच्छा, अब चलें इस हम अपने सवाल को जो है ना थोड़ा सा और आपके सामने इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। वो ये है कि ये एक किस्सा है ना, ठीक है, कुरान मजीद के अंदर और भी तो बहुत सारे किस्से हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है, आदम अलैहिस्सलाम, वेल आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है वैसे, तो बहुत सारे किस्से हैं। इस किस्से में और इन किस्सों में क्या फर्क है, उन कसस में और इस किस्से के अंदर क्या फर्क है? ये पहले हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर असल में। अहसनुल कसस है, अच्छा वो अहसनुल कसस नहीं है, ठीक है, अहसनुल कसस तो ठीक है ना, वो तो बस बात हो गई ना, ठीक है, लेकिन एक और अंदाज से जरा ज्यादा, यानी इल्मी नजर से अगर देखें तो, चलें वक्त भी इतना ज्यादा नहीं है, कुछ तो आगे पढ़ें, तो फर्क जो है ना वो पहले हमारी बात हुई थी इसके ऊपर कि ये किस्सा, ये किन लोगों का किस्सा है, ये किन लोगों का किस्सा है, राइट, ये कुफार का किस्सा है, ये मुनाफिकीन का किस्सा है, या ये मोमिनीन का किस्सा है? एग्जैक्टली, ये पूरा का पूरा किस्सा जो है वो ईमान वालों का किस्सा है, नबुवत के घराने का किस्सा, और वो सारे ईमान वाले थे, वालिदे मोहतरम भी, बेटे भी, और जो यानी अच्छा काम करने वाले भी, और जो बुरा काम करने वाले भी थे, सारे ईमान वाले। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर फिरौन होता है, फिरौन के जो है वो दरबारी होते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, दो साइड है ना, वो काफिर ये मुसलमान, दूसरे जितने किस्से हैं एक तरफ काफिर एक तरफ मुसलमान, या एक तरफ मुनाफिक दूसरी तरफ जो है वो ईमान वाले, ठीक है ना, ये किस्सा खास ईमान वालों का किस्सा है। इसके अंदर जो काफिर है भी ना वो बिल्कुल पेरिफ्रीज में साइड रोल्स हैं उनका, जैसे अजीज मिस्र, या जो है वो उनको खरीद करके जो है वो बेच करके आने वाले मिस्र के बाजार के अंदर, वो भी शायद काफिर, राइट, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस किस्से के वो सारे के सारे ईमान वाले हैं। और हम कौन हैं, या मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह मारुफुल कुरान जिनके लिए लिख रहे थे, ये कौन लोग थे? ये हम और आप थे, उर्दू जुबान समझने वाले, ठीक है, तो ईमान वालों के लिए लिख रहे थे, और ये किस्सा सारा का सारा ईमान वालों के लिए है। तो इसमें ना हमारे लिए बिल्कुल डायरेक्ट रेलेवेंस है इस किस्से के अंदर कि हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पे भी ईमान रखते हैं, हम नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं, खा आखरत के ऊपर भी ईमान रखते हैं, लेकिन अपने नफ्स से मغلوب हो जाते हैं। देखें, इस सूरत के अंदर नफ्स अम्मारा का भी जिक्र है, नफ्स अम्मारा का भी जिक्र है इस सूरत के अंदर, ठीक है ना, जिसका कि हम शिकार हैं। हमारे अंदर तकरीबन हम सब अपने आप अपने बारे में अगर देखें, हकीकत से अपने गरेबान में झांक करके देखें, तो हम सब का जो नफ्स है ना वो समवेयर बिटवीन नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा, बल्कि लवामा भी इतना बड़ा मुकाम होता है कि हम अपने बारे में क्लेम नहीं कर सकते कि हमें नफ्स लवामा मिल गया। बहुत सारी हरकतें हमारी ऐसी हैं जिसमें हमें कोई मलामत फील नहीं होती, वी डोंट ब्लेम आवर सेल्व, वी ब्लेम समवन एल्स, हम किसी और के ऊपर मलामत करते हैं, गलती होती है, गुना अजाब आता है, परेशानी आती है, जिल्लत आती है, रुसवाई आती है, तो हम ब्लेम तो करते हैं, हम मलामत तो करते हैं, लेकिन किसको करते हैं? अपने आप को नहीं करते, दूसरे को करते हैं। तो इस वजह से हम नफ्से लवामा तक नहीं पहुंचे हैं, हम नफ्से अम्मारा तक ही हैं। और इस सूरत के अंदर जिक्र किया है, इन्ना नफ्सा लअम्मारा तुम बिस्सू, तो ये किस पर ये मुंतबिक होता है? ये हमारे ऊपर मुंतबिक होता है, ठीक है ना? लेकिन साथ साथ ईमान वाले भी हैं, राइट? ये तो नहीं कह सकते कि हम काफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत पर, नबी अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर हम सब का ईमान है, ठीक है? तो ये ऐसी रेलेवेंट सूरत है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो शायद ये वजह है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस वजह से उन्होंने ये काम किया, लेकिन दिल में तो यही बात आई, आपके सामने रख दी। तो अगर आपको इख्तलाफ हो तो आप बता दीजिएगा वजह इख्तलाफ अपनी। तो अहकाम और हिदायात में इन आयात की हजरत मुतशफ़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अखबार गैब और इल्म गैब में फर्क, ठीक है? तो ज़ालिक मिन अम्बाइल ग़ैबी नूही ही इलैक, कि ये सब कुछ गैब की खबरों में से है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बतलाते हैं, वही आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है? यही मजमून तकरीबन उन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ सूरह आले इमरान आयत नंबर 44 के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी आया है, ज़ालिक मिन अम्बाइल ग़ैबी नूही ही इलैक, बिल्कुल वही अल्फाज, ठीक है? सूरह मरियम, सूरह आल इमरान के अंदर भी, और सूरह हूद की आयत नंबर 49 में नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से मुतालिक आया है, तिलका मिन अम्बाइल ग़ैबी नूहीहा इलैका, ठीक है? बस ज़ालिका और तिलका का फर्क है, और ज़ाहिर है ज़ालिका की वजह से नूही ही है और तिलका की वजह से नूहीहा है, ठीक है? बाकी अल्फाज बिल्कुल वही हैं। तो इन आयतों से एक बात तो ये मालूम हुई कि हक तआला अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम को बहुत सी गैब की खबरों पर बजरिया वही मुत्तला कर देते हैं, इत्तला दे देते हैं, खुसूसन हमारे रसूल सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इन गैब की खबरों का खास हिस्सा अता फरमाया है जो तमाम अम्बिया साबिकीन से ज्यादा है। यही वजह है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कयामत तक होने वाले बहुत से वाकयात का तफसील या इजमाल से बता दिया है, ठीक है? जो कयामत की निशानियों वाले और फितनों वाले जो जो अहदीस हैं, कितनी ज्यादा ये अहदीस हैं, पूरी पूरी किताबें उनके ऊपर मुरतब होती हैं, ठीक है? दज्जाल के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, और अलामात कुबरा के बारे में, अलामात सुगरा के बारे में, फितनों के बारे में, इतना ज्यादा जो नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म अहादीस के अंदर हमें दिया, वो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। कुतुब हदीस में किताबुल फितन की तमाम हदीसें इससे भरी हुई हैं। अवामुन नास चूंकि इल्म गैब सिर्फ उसी को जानते हैं कि कोई शख्स गैब की खबरों से किसी तरह वाकिफ हो जाए, और ये वस्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजाए अतम मौजूद है, यानी बदरजाए अतम यानी ऐसा दर्जा कि जो कि इतमाम मुकम्मल जैसा कि लगता है, ठीक है? इसलिए ख्याल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब थे, गैब का इल्म रखने वाले, यानी जो भी गायब चीजें हैं उनका इल्म रखने वाले। आलिमुल गैब का जो असल मतलब बनता है वो कि अल गैब, अलिफ लाम के अंदर इस्तियाब होता है, यानी अलिफ लाम जो है ना, ये जब किसी लफ्ज के साथ लग जाए तो उसकी एक सिफत जो बनती है वो ये कि हर चीज को कवर कर लेती है उसके अंदर। जैसे अलहमद, अलहमद का मतलब क्या है कि हमद की जो भी शक्ल हो वो सब की सब अलहमद के अंदर आ जाती है, जो भी सूरत हो, जो भी यानी वजह हो, जो भी आप शक्ल मना लें तारीफ की, अलहम्द के अंदर सब कुछ आ जाता है। भाई अलगैब ये भी जो है ना, वो अलिफ्लाम के साथ इसके अंदर भी ये सिफत आ जाती है। तो आलिमुल गैब, अवाम उन्नास को तो ये सारी बातें नहीं पता होती है ना, ना तो अरबी जुबान का पता, ना जो है वो अकायद का सही तरीके से पता, ना कुछ किसी किसी चीज का पता। तो अवाम उन्नास को अकायद का नहीं पता, तो अल्लाह ने एक बात डाल दी है तो वो भी सुन लीजिए कि हम बड़े अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई नई नई शुरू नहीं किया है, काफी अरसे से जो है वो अकायद अकायद अकायद, ईमान की हिफाजत, दज्जाल, ईमान का फितना होगा, अकायद सबसे ज्यादा अहम होते हैं, उनके ऊपर ईमान का दारोमदार होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी मजालिस के अंदर और क्लासेस के अंदर इसकी बात हो चुकी है। तो अब जो है ना, कुछ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह गौर से बात सुनते हैं तो उनको फिक्र होती है कि भाई अकायद जो है वो ऐसे खराब हो सकते हैं, अकायद जो है वो उनके ऊपर ईमान डिपेंड करता है। तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि जी अकायद कैसे पता चलेंगे कि हमारे अकायद ठीक हैं। ठीक है, तो पहले जब ये सवाल आता था हमारे पास कि कैसे पता चलेगा जी हमारे अकायद ठीक हैं, तो हम उनको कहते थे ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि आप जो है ना वो चेक करते जाए मेरा ये अकीदा ठीक है, उस पर टिक लगाते जाए, चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट ऐसी नहीं है अकायद। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप उलमाए हक के साथ जुड़ के रहें, अच्छी तरीके से जुड़ के रहें कि इतना आपका उनके साथ ताल्लुक हो कि अगर आप कभी किसी गलत अकीदे का शिकार होने लगें तो या तो आप उनसे खुल के पूछ सकें या उनको पता चल जाए कि आप किस चक्कर में किस तरफ निकल रहे हैं और वो आपको रोक दें, वो आपको टोक दें। इतना गहरा ताल्लुक होना जरूरी है उलमाए हक के साथ। ऐसी वाजिबी नहीं कि कभी जाके बैठ गए, कभी टहलते हुए पहुंच गए, फिर उसके बाद निकल गए, और उसके बाद जो है वो मूड हुआ तो आ गए, नहीं मूड हुआ तो, और कोई जान पहचान, कोई ताल्लुक, कोई पूछने पाछने का, कोई रोक टोक का कोई सिलसिला नहीं है। नहीं, ऐसे अकायद की हिफाजत नहीं होगी। अकायद की हिफाजत तो होगी कि आप या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन के हुक्म के ऊपर अमल करें। अल्लाह का हुक्म है, कोई मजाक तो नहीं है ना, इस हुक्म पे अमल करें तब आपके अकीदे की हिफाजत होगी, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब रिसेंटली कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये अकायद हम किस किताब में से पढ़ें और अकायद जो है ना वो हम किस क्या कहते हैं, यानी कोई क्लास कर लें अकायद की। तो भाई अब वैसे तो हमने बुक से जो है वो क्लास मुफ्ती साहब भी करवा रहे हैं हमारे पास, और दूसरी भी बहुत सारी इस तरह की होती हैं क्लासेस वगैरह, और किताब भी अकायद की मौजूद है, जो शरा ये जो कायद तहाविया सबसे ज्यादा मदारिस के अंदर जो सादा और सिंपल किताब है, अवाम उन्नास में भी पढ़ाई जाती है, तो वो पढ़ सकते हैं अकायद की। लेकिन एक बात याद रखें इस वक्त जो है ना, वो एक अहम बात याद रखें कि ये जो फितने दज्जाल के जमाने के अकायद के मसले पड़े हुए हैं ना आज के जमाने में, ठीक है ना, ये जो अकायद के मसले पड़े हुए हैं ना, ये कोई आपको अकायद ये अकीदत तो तहाविया वाली किताब पढ़ करके आपको कोई खास इससे फायदा नहीं होगा, कोई खास फायदा नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा, आपका इल्म बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फितने दज्जाल के जमाने में अकायद को मस्क करने का जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है ना, ये रास्ता जो है ना, ये जरा डिफरेंट किस्म का रास्ता है, ये डिफरेंट किस्म का रास्ता है। और वो क्या है, वो ये है, नंबर वन, दो दो इसकी जिहतें समझने, इसकी दो जिहतें हैं, इसकी दो एंगल्स हैं, फितने दज्जाल में अकीदे की खराबी के दो एंगल्स। ये वो टेक्निकलिटीज नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत का इनकार, ये था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्मे नबूवत की मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, ये बात बिल्कुल खुल चुकी है। और उसी तरीके से इस तरह के और टेक्निकल अकीदे के मसले, ये उम्मत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक की मेहनतों से ये खुल चुका है। ठीक है ना, इस वक्त जो दो जिहतें चल रही हैं ना अकीदे की खराबी की, वो क्या हैं? चलें, आपने अब जवाब देना शुरू कर दिया, तो आप बैल मुझे मार, अब आप जवाब भी दें। ठीक है, अब आप जवाब भी दें कि वो कौन सी दो जिहतें हैं कि जिनसे अकीदा खराब किया जाता है, ईमान से महरूम किया जाता है इस दौर के अंदर, और वो आपको किताबों के अंदर मिलेगा भी नहीं, और वो अभी तक खुल के सामने भी नहीं आ रहा, हम लोग उसके बारे में जरा फिक्रमंद भी नहीं हो रहे, वो क्या है दो रास्ते? ठीक है, तालीमी निजाम से सोच को खराब करना, वो तो उनका मेथड है ना खराब करने का। ठीक है, चले, खैर वो आपका अपना अंदाज है इस बात को बयान करने का, लेकिन हम जो बात पूछ रहे हैं कुछ और पूछ रहे हैं। दीनी रास्ते के जरिए से, सोशल मीडिया के रास्ते, नहीं, म्यूजिक, सोशल मीडिया म्यूजिक किधर से आ गई? नहीं, मशायख के बारे में गलत फहमियां नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये जहते हैं अकीदे को खराब करने के, लेकिन इस वक्त ये नहीं चल रही है। मार्केट में जो है ना, जो मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं वो ये नहीं है, ठीक है ना। पॉपुलर तरीके दो हैं एग्जैक्टली, सबको मुसलमान समझना नहीं, इसको नहीं, बल्कि सबको ठीक समझना। सबको मुसलमान कैसे समझ सकते हैं, वो अपने आप को मुसलमान कह नहीं रहा है, आप उसको मुसलमान समझना शुरू कह रहा है, बल्कि सबको ठीक समझना, सबको अल्लाह ताला, सब दीनों को अच्छा दीन समझना, अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाले अध्ययन समझना, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आज जो है वो फकीर को किसी ने, एक हिंदू जो है ना वो पंडित की वीडियो भेज दी, वो हिंदू पंडित साहब जो हैं वो आकर के मतलब अपने, उनका प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में अजीब गरीब किस्म के हुलियों वाले लोग बैठे हुए, मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं, और वो जो है ना वो आके कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारा नबी सिर्फ तुम्हारा नबी है, वो नहीं नहीं है, वो हमारा भी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी जाहिर मुंह से नहीं निकल रहा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम बोलेंगे ना, वो ये सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं है, ये हिंदुओं के भी प्रॉफिट है, ये सबके, ये सब यानी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का लफ्ज नहीं, ये हमारा भी है। वही जो जो क्या कहते हैं, इसके ऊपर नज़में भी मौजूद हैं, किसी सिख की भी नज़म आपको मिल जाएगी, किसी की जो है वो आपको यानी अमेरिकन नॉन मुस्लिम स्कॉलर की जो है वो आपको बुक भी मिल जाएगी, किसी यूरोपियन इंटेलेक्चुअल की भी आपको इसके ऊपर डिस्कोर्सेज मिल जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की शान, ठीक है ना। एक तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि अल्लाह के बंदे, जब तुम इतनी शान बयान कर रहे हो, इतना उनके जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, तो तुम उनको सच्चा क्यों नहीं मान लेते, तकजीब क्यों करते हो उनकी, मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, ईमान क्यों नहीं लेकर के आ जाते, ठीक है ना। बहरहाल ये तो एक सवाल है, लेकिन ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन पिछले जमानों में जब वो ये करते थे ना बहुत सारे, ये तो ख्वाजा अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम के चचा ने जो कसीदा लिखा था ना नबी अलैहिस्सलाम की शान में, उसके सामने तो ये हिंदू पंडित का जो नज़म उसने लिखी है वो कोई हैसियत नहीं रखती, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ में जो अबू तालिब ने लिखी थी, और नबी अलैहिस्सलाम की जो जो तारीफ जो है वो जो उस जमाने के काफिरों ने करी थी, हिरकल, हेराक्यूलस ऑफ रोम ने क्या कहा था कि अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊं तो मैं उनके पांव धो करके पानी पीऊं, या मैं उनके अपने हाथों से उनके पांव धोऊं, राइट। लेकिन ईमान नहीं लेकर के आया, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दोनों जहन्नुम के अंदर। तो कसीदे आज कोई थोड़ी कसीदे लिखे हैं किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में, वो तो पहले दिन से कसीदे लिखे जा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की शान में। लेकिन अगर ईमान नहीं लेकर के आए, तस्दीक नहीं करी बल्कि तकजीब करी, तो काफिर और हमेशा हमेशा की जहन्नुम, ठीक है। लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि पिछले जमानों में जब मुसलमान इस किस्म की बातें पढ़ते थे सुनते थे, उनका नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान बढ़ जाता था, आप से मोहब्बत बढ़ जाती थी, यकीन बढ़ जाता था। देखो दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आका अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं। आज क्या होता है, आज क्या होता है कि जब हिंदू के मुंह से तारीफ सुनते हैं, जब किसी और के मुंह से तारीफ सुनते हैं, तो इस दौर के अंदर चूंकि तालीमी निजाम की वजह से, मीडिया की वजह से और काफिरों के साथ इख्तलात की कसरत की वजह से, काफिरों के साथ कसरत इख्तलात, चाहे आप मुसलमान मुल्क में रहते हो तो ऑनलाइन इख्तलात होगा, यानी उनके साथ इंटरेक्शन आपकी ऑनलाइन वर्क प्लेस के ऊपर भी, एजुकेशन के अंदर भी, बहुत ज्यादा काफिरों के साथ फिजिकली ना हो तो ऑनलाइन ही हैं, और वो हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम भी उनकी तारीफ करें, वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं तो हम भी उनके दीन को जो है वो अच्छा समझें और जहन्नुम के जाने का सबब ना समझें, राइट। जहन्नुम में जाने का सबब ना समझें, ये हम अपना क्या समझना शुरू करें, अपना इखलाकी जिम्मेदारी समझना शुरू कर दें, अपनी रवादारी समझना शुरू कर देते, ठीक है ना। तो खाली मुंह पे उनके साथ कोई मामला नहीं करना, बल्कि दिल में उनको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, उनके दीन को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसे फिर मुसलमान का दीन खत्म हो जाता है, वो मुर्तद हो जाता है, इर्तिदाद, जिसके ऊपर अल्लाम वो मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी कि तालीमी निज़ाम और यूरोप की तहजीब के नतीजे में इर्तेदाद किस तरह से फैला है पूरे दी पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर, जैसा कभी भी माजी में नहीं। ठीक है, हाँ उसको डील हमें ऐसे नहीं करना कि जो ऐसी हरकत करे तो उसका बीवी के साथ तलाक करवा दो और फिर उसका जो है वो मुआशरे से अलग कर दो। नहीं, उसको दूसरे तरीके से डील करने की जरूरत है। लेकिन मुर्तद हो गया ना ऐसा बंदा, भाई ये तो नहीं कह सकते कि हाँ वो कहे कि हिंदुइज्म के जरिए से भी जन्नत में जाया जा सकता है, रहमतुल्ला अलैह नाउज बिल्ला किसी हिंदू मर जाए तो उसको जो है वो रहमतुल्ला अलैह और शहीद और न जाने क्या क्या बोलना शुरू हो जाए और इसके ईमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस। ठीक है ना, तो ये इर्तिदाद ये एक रास्ता है, यानी इस्लाम के अलावा दूसरे मजाहिब को अदियान को सही समझने का रास्ता। ठीक है, और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता इस दौर के अंदर जो कि अवाम उन्नास भी नहीं समझ रहे, बल्कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि कैसे कैसे जो है वो अकायद खराब होते हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? दूसरा रास्ता या दूसरी जहत या दूसरी आंख, दूसरा एंगल। ठीक है, वो क्या है? जब तक मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लूँ, अगर आप ट्राई करना चाहें इसका जवाब देना, मैसेजेस कुछ आ गए थे तो पढ़े ही मैंने अभी तक, तो लिखा था बिदात से सब सही। हाँ, सब सही वाला रास्ता, सारे दीन का ठीक समझना। जी बिल्कुल, यही बात हुई, गुनाह करने से कुछ नहीं होगा का कॉन्सेप्ट। नो वन लेफ्ट इन दिस टाइम, नो वन लेफ्ट इन दिस, लेफ्ट इन दिस टाइम, हिंदू भी ठीक लगते हैं फिर। जी वी कम क्लोज टू देम, एवरीवन इज राइट, एग्जैक्टली, लोग कर्टसी में उनके खुदाओं को भी ठीक कहना शुरू कर देते हैं। हाँ, कर्टसी में, उसी को तो हमने कहा ना अखलाकी रवादारी समझ करके उनको जो है वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। इस दौर के अंदर दूसरी जहत, ये तो पहली जहत हो गई ना, दूसरी जहत क्या है? ठीक है, दूसरी जहत जो है ना, ये वही जहत है कि जो कि हमने 20, अब तो 19 के बजाय 20 कहना शुरू कर दिया है, ये जो ईमान और कुफर वाली किताब पढ़ी है ना 20 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है ना, वो किताब जो थी वो किस बारे में बात कर रही थी? कि जब जो कुरान और हदीस से कतई दलालत चीजें हैं, कतई सबूत चीजें हैं, उनका इनकार कर देना। क्या मतलब? अहकामात, असल में हजरत का फोकस उस किताब के अंदर था अहकामात के ऊपर, जो अहकामात कतई दलाला हैं उनको कहना शुरू कर देना कि नहीं ये नहीं है अल्लाह का हुक्म। ठीक है ना, उसको ऐसे कहना शुरू कर देना, इससे जो है ना इस इंसान का ईमान खत्म हो जाता है, इससे इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। अगर किसी को इसकी तफसील अभी तक नहीं पता, वो जाकर के किताब को भी पढ़ लें और लेक्चर्स को भी सुन लें। ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी इबादतें करे, करातें करे, नमाजें पढ़े, तरावियां पढ़े, तहज्जुद पढ़े, कुछ भी पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कतई दलाला चीज की का इनकार कर दिया, अब वो ईमान से फारग हो गया। ठीक है, और ये ऐसा मामला है कि जिसको कि हम अहमियत ही नहीं दे रहे। ठीक है, कि भाई फराइज और अकायद को, ये ईमान का दारोमदार इन चीजों के ऊपर है। अगर आप फराइज का इनकार कर देंगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। अब आप करते रहे नफलें जितनी भी आपको करनी है, लेकिन ईमान खत्म हो चुका है इसका। ठीक है, तो इस वजह से ना ये यानी ये भी चलता है, ये भी चलता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो ऊपर आपने जवाब भी दिया कि कुछ नहीं होता, भाई फराइज जब आपने छोड़े हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं होता? कुरान कह रहा है अजाब होता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अजाब होता है, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता। तो फिर आप अपने आप को क्या समझते हैं? कुरान से अफजल समझते हैं? अपनी अकल को, अपनी समझ को, अपने जो भी आपके रवादारी है, आपके अखलाकियात हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम जो रहमतुल आलमीन थे उनसे बढ़कर के आप रहमतुल आलमीन बन चुके हैं, इसका मतलब है अपने अपने गुमान के अंदर। ठीक है, बहरहाल कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन बात ही इतनी अहम है कि किताब आगे पढ़ने से ज्यादा ये बात समझना। अच्छा, इन्होंने लंबा सा एक मैसेज लिख दिया, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, क्या लिखा आपने? कि आज लोग अपनी मर्जी के काम को अहसन अमल समझ लेते हैं, वो कहते हैं सबका अल्लाह का रसूल, सबका अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अपना अंदाज है, सब सही है, बिदात को गलत नहीं मानते। वो कहते हैं कि शहीद जिंदा हैं तो फिर क्यों दुआ नहीं कर सकते? है? शहीद जिंदा है तो फिर क्यों दुआ नहीं कर सकते? जी, बिदात को बुरा नहीं मानना अमली बिदात अगर हो तो उससे ईमान खत्म नहीं हो जाता, लेकिन अगर अकीदे की बिदात हो जाए तो उनसे ईमान खत्म हो जाता है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ना। तो ईमान की हिफाजत ऐसे उसमें, एक तो अल्लाह ताला से दुआ करनी, उन बातों को इनका इल्म हासिल करना। बहरहाल, तो किताब के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, कितना टाइम हो गया है, 8:18, 10 मिनट, 11 मिनट हो गया। बहुत से लोग तो हदीस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि क्या यकीन है कि किसी ने इसमें मिलावट नहीं की इतने अरसे में, वो सहाबा की तरह ईमान पर अमल नहीं कर। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम खुद भी इन बातों के बारे में बिल्कुल पक्के हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और हम जो जो इल्म हासिल हुआ है उसको फिर हम आगे फैलाने वाले भी बन जाए, लोगों को पता तो चले ना। ये स्कूल कॉलेज में अच्छे अच्छे पक्के पक्के ग्रेड्स लाने के बाद किसी के पास कितना टाइम बचता है कि वो इन चीज़ों का इल्म हासिल कर सके, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो जॉब मार्केट में आता है तो वहां पर जो है वो सुबह, कल भी किसी से यही बात हो रही थी, 2 घंटे का ट्रैफिक में फंस करके जाता है, 2 घंटे का ट्रैफिक में फंस करके आता है या आती है, अब तो आती भी तो है ना, जाती भी है और आती भी है, और फिर उसके बाद जो उसका हेल्थ के ऊपर टोल पड़ता है उनका, और उसके बाद जो नफसियाती जो है वो जो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है इन सब चीजों का, और फिर महंगाई, कमर तोड़ किस्म की महंगाई, और हर चीज जो है वो आपके पहुंच से बाहर जा रही है, ख्वाहिशात तो दूर की बात, जरूरियात भी आपके पहुंच से बाहर जा रही है। तो ये सारा का सारा निजाम जो शयातीन ने बनाया है अल्लाह की दी हुई छूट की वजह से, क्यों अल्लाह ने छूट दी शयातीन को, हमारे गुनाहों की वजह से। तो अब शैतान ने जो निजाम बना दिया है, तो उसके बाद जो है वो किस किसके पास इतना वक्त होता है कि वो सही जराए से जा करके और सही जो है वो इल्म हासिल करे कि जी हदीस के क्या दर्जे होते हैं, कौन सी मुतवातिर होती हैं, कौन सी जो है मशहूर होती हैं, जिनका के इनकार करने से जो है वो आप ईमान से बाहर चले जाते हैं, और क्या उसकी जो है वो ऑथेंटिसिटी है हदीस की, क्या 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 कि हदीस जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो किसी ने आकर के उसके अंदर ऐड कर दी। तारीख की किताबों के ऊपर तो तुम्हारा कितना ईमान होता है ना, कि जो कुछ तारीख की किताबों में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, हालांकि तारीख की किताबों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन हदीस और कुरान मजीद की तो ऑथेंटिसिटी है ना, सारे दरजात जो है वो पक्के हुए हैं, ठीक है। तो ये ला इल्मी और कम इल्मी और बेतवज्जुही की वजह से हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमारे ईमान को कुछ पता नहीं है, कि पता नहीं कितने मुसलमान हैं, कितने काफिर हो चुके हैं। एनीवे तो फरमाते हैं कि अवामुन नास, चूंकि इल्म गैब सिर्फ इसी को जानते हैं कि कोई शख्स गैब की खबरों से किसी तरह वाकिफ हो जाए, और ये वस्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजे अतम मौजूद है, इसलिए ख्याल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, मगर कुरान करीम ने साफ लफ्जों में ऐलान फरमाया है, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, ठीक है, कि नहीं इल्म रखता जो आसमान और जमीन के अंदर है गैब का सिवाय अल्लाह, ठीक है, यानी जो भी आसमान और जमीन में है ना वो नहीं इल्म रखता गैब का सिवाय अल्लाह के, ठीक है। और यहां पर भी अल गैब, ये नहीं कि कोई चीज छुपी हुई थी वो आपको पता चल गई, किसी चीज के बारे में आपको कशफन पता चल गया, या किसी चीज के बारे में आपको इत्तला दे दी गई इस वजह से आपको पता चल गया, बल्कि अल गैब सारे के सारे गैब का इल्म रखने वाला कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो हजरत फरमाते हैं कि जिससे मालूम होता है कि आलिमुल गैब सिर्फ खुदाए तआला के और कोई नहीं हो सकता, इल्मे गैब अल्लाह जल्ला शानहु की सिफत खासा है, इसमें किसी रसूल या फरिश्ते को शरीक समझना उनको अल्लाह के बराबर बनाने के मुतरादिफ है, और ईसाइयों का अमल है जो रसूल को खुदा का बेटा और खुदा का खुदाई का शरीक करार देते हैं, ठीक है ना। यानी ये उसी तरह की का शिर्क हो जाता है जैसे कि हजरत ने तो अल्फाज ही इस्तेमाल किए हैं, वैसे इसकी बुनियाद पर जो है वो बरेलवियों या इन लोगों को जो है वो कुफर का फतवा तो उनके ऊपर नहीं दिया जाता, ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को आलमुल गैब मानते हैं, लेकिन उसकी यानी उनको तो नहीं कहा जाता कि ईसाई की तरह वो भी काफिर है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह जो है वो आगे हजरत बयान फरमा रहे हैं कि क्यों उनको काफिर नहीं कहा जाता, ठीक है। तो लेकिन ये इसी तरह की ही एक बात है, ठीक है, कि ईसाइयों ने जो है वो रसूल को खुदा का बेटा कह दिया और खुदाई का शरीक करार दे दिया, तो आप भी जो है वो इल्म के अंदर उनको खुदा का शरीक करार दे रहे हैं। कुरान करीम की मजकूरा आयतों से मुआमले की पूरी हकीकत वाज़ह हो गई कि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत खासा है और आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू ही है। अलबत्ता गैब की बहुत सी खबरें अल्लाह ताला अपने रसूलों को बजरिए वही बतला देते हैं। ये कुरान करीम की इस्तेलाह में इल्मे गैब नहीं कहलाता, और आवाम चूंकि इस बारीक फर्क को नहीं समझते। लेकिन बारीक फर्क, ये बारीक फर्क जो है ना, जो कि अवाम उन्नास नहीं समझते, तो ये बचत का सबब बन जाता है कि ये बारीक फर्क है, ठीक है ना। तो अवाम उन्नास की जहालत और बारीक फर्क का उनकी इस जहालत के साथ जो है वो ना समझ पाना, ये उनके लिए बचने का सबब बन जाता है कि उनको कुफर का फतवा उनके ऊपर नहीं नहीं पड़ता। वरना तो अगर ये बारीक फर्क ना होता बल्कि मोटा फर्क होता, जैसे बेटा होना या बेटा ना होना। ईसाई जो ईसा अलैहि सलाम को बेटा कहते हैं, तो ये कोई बारीक फर्क है बंदे और बेटे के अंदर? बारीक फर्क है कि जी बंदा जो है ना वो बा नून दाल और हा, और बेटा जो है वो भी बा से ही होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो या टा अलिफ बेटा, राइट। तो ये बारीक फर्क हुआ, इस वजह से ईसाई जो है वो काफिर नहीं होते। नहीं, ये बारीक फर्क नहीं है, तो बहुत ज्यादा मोटा फर्क है, बेटा और बंदा, राइट, यानी वलद और औलाद और यानी गुलाम स्लेव। ये बारीक फर्क नहीं है, मोटा फर्क है। इस वजह से ईसाइयों की बचत नहीं हो सकती कि हाँ भाई वो बारीक फर्क की वजह से जो है ना वो बेटा और बंदे में फर्क नहीं कर पाए, इस वजह से वो काफिर नहीं हो। लेकिन ये जो है ना, ये अलहमदुल्ला हम जो कि हमने भी कौन सी चार जमातें पढ़ ली, तो हम कौन सा ज्यादा इल्म वाले बन गए। चंद चंद कुछ अर्सा पहले हम भी ऐसे ही थे, क्योंकि माशाल्लाह अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाने थे, मेडल लाने थे, और बहुत कुछ पढ़ाई करनी थी और इल्म हासिल करना था, क्योंकि कुरान मजीद और कुरान मजीद इकरा से शुरू हुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म की अहमियत पे इतना ज्यादा जोर दिया है। तो इस वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ और साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री और हर चीज़ का अच्छे से इल्म भी हासिल करना है और ग्रेड्स भी लेकर के आना है। ईमान व अमान तो देखा जाएगा, मरने के बाद देख लेंगे, कब्र में पहुंचेंगे ना सब पता चल जाएगा। बस वहां पे ट्यूशन ले लेंगे वहां पे जाकर के ईमान की, और जब वो एग्जामिनर साहब आएंगे सवाल पूछने के लिए, तो ट्यूशन लेकर के फिर उसके बाद वहां पर भी अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे ट्यूशन ले लेकर के अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं, वहां पे भी ट्यूशन लेके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे कब्र के अंदर। लेकिन वो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो इस वजह से हमें भी कुछ नहीं पता, राइट। अल्लाह ताला मेहरबान, अल्लाह ताला बेहतरीन जजाय खैर दे जिन लोगों ने हमारे पीछे लग लग करके हमें सिखाया, वरना मूड तो नहीं था सीखने का, लेकिन पीछे पढ़ पढ़ करके हमें सिखाया, ठीक है। तो अवाम जो कि इस बारीक फर्क को नहीं समझते, तो गैब की खबरों ही को इल्म गैब कह देते हैं। और जब पुरानी इस्तेलाह के मुताबिक गैरुल्लाह से इल्म गैब की नफी का जिक्र किया जाता है, तो इससे इख्तिलाफ करने लगते हैं, यानी बहस मुबाहिसा इख्तिलाफ वगैरह करने लगते हैं, जिसकी हकीकत इससे ज्यादा नहीं कि इख्तिलाफ खल्क अजनाम औ फतात, फारसी मुझे आती नहीं है तो बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चू बमानी रफ्त आराम औ फतात, तो थोड़ा बहुत कोशिश करी थी, मौका मिल गया था तो उसका तर्जुमा देखने की। तो इसका मफहूम इस तरह बनता है कि जो नाम से लोगों में ना फर्क पड़ गया, नाम का फर्क था, तो लोगों में जो है ना वो इख्तलाफ हो गया, तो यानी खल्क में जो है ना वो नाम की वजह से इख्तलाफ हो गया। अब चूंकि वो चला गया ना, तो वो पुरसुकून हो गया, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम की वजह से जो है वो लोगों में इख्तलाफ पड़ा है, वो तो चला गया, वो तो सुकून में आ गया, ठीक है। बहरहाल अब ये यानी इससे बेसिक बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी का एक फर्क, ठीक है ना। तो बारीक सा फर्क इसको कहा, इसी वजह से ऐसे रात को जो काफिर नहीं कहा जाता। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि वमा अरसलना मिन कबल का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुर। इस आयत में अल्लाह ताला के रसूलों के मुताल्लिक लफ्ज रिजालन से मालूम हुआ कि रसूल हमेशा मर्द ही होते हैं, औरत नबी या रसूल नहीं हो सकता, ठीक है। वमा अरसलना मिन कबल का, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले, इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, सिवाय मर्द के हम वही करते थे उनकी तरफ, मिन अहलिल कुरा, वो बस्ती वालों में से होते थे। ये आगे आ रहा है इसका तफसीर। अच्छा, तो औरत जो है ना वो नबी या रसूल नहीं हो सकती। तो हजरत मरियम अलैहि सलाम को अलैहि सलाम क्यों कहा जाता है? वही उनके ऊपर सलामती है, ये कोई कुरान मजीद का उसूल कोई थोड़ी है कि अलैहि सलाम जो है वो कहने से कोई रसूल बन जाता है। तो अलैहि सलाम का मतलब उनके अलैहि सलाम, आ अलिफ की जमीर होगी। तो लगता है ना ये उर्फ की बात होगी ना खाली, ठीक है ना, ये कोई शरीयत की बात नहीं है कि अलैहि सलाम जो है वो हराम है औरत के साथ लगा देना, अगर लगा देगा कोई तो वो नबी करार देने वालों में से हो जाएगा, ये ऐसा कोई उसूल नहीं, ठीक है। तो उर्फ के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, उनको रजी अल्लाह तआला कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो रजी अल्लाह तआला तो खाली सहाबा के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ जो है वो माशाल्लाह मोहब्बत इमाम आजम में तो बहरहाल अलैहि सलाम के लफ्जी माने तो ये है ना उनके ऊपर सलामती हो, तो ठीक है रजी अल्लाह तआला कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो एक नबी की सहाबिया थी, ठीक है। तो क्या ये सही है इस तरह लकब लगाए, गलत भी नहीं है, ठीक है ना, गलत भी नहीं है, तो उसको लफ्जी मानी में ले लेना बस, क्योंकि अक्सर आप किताबों के अंदर भी, पढ़ों की किताबों के अंदर भी अलैहि सलाम पढ़ लेंगे तो अब वो गलत बोलना शुरू कर देंगे, तो भी क्या हमारे बड़ों ने गलत गलती करी, ऐसा कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, बस अहमियत ना दें इसको। इमाम इबन कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जमहूर उलमा का यही कौल नकल किया है कि अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया, ठीक है, औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन अगर कोई आप में से, टाइम तो असल में बस खत्म हो गया है लेकिन थोड़ी बहुत है, औरत को नबी और रसूल नहीं बनाया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीजन, खवातीन भी मौजूद है क्लास में, मालूम होना चाहिए ना भाई कि आपको क्यों ये वाला मतलब आपकी जिन्स को नहीं दिया गया, तो अल्लाह ताला कोई बायस थे या अल्लाह ताला को नाउजुबिल्लाह औरतें अच्छी नहीं लगती इस वजह से उनको नबूवत नहीं दी, जैसे कि आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो चाहेंगी इस तरह की बातों को एक्सप्लॉइट करना और हमारा ईमान खराब करना, ठीक है। वलिर रिजाल अलैहिन्न दरजा, ये तो वजह तो ना बनी ना, दरजा विमेन आर इमोशनल बीइंग्स, जज्बात पर्दे की वजह से औरतों को औरतों में नबी बना देते हैं, मर्दों को मर्दों में नबी बना देते हैं, ठीक है भाई, अल्लाह ताला चाहते हैं ऐसे भी कर सकते थे। औरत नाखुश अकल होती है, चले जी आप तो बिल्कुल ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात आपने कह दी, वैसे तो होती तो है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ना, तो होती तो खैर है, लेकिन ये कोई जवाब तो ना हो ना, तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं कि औरत नाखुश अकल होती है, औरत के ऊपर पर्दे की जिम्मेदारी होती है, औरत जो है वो कमजोर होती है वगैरह, औरत के अंदर जज्बात ज्यादा होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट रोल इन साइड द हाउस वाइल नबीज रोल इज एक्सटर्नल, औरतों की तख्लीक का मकसद ही अलहदा है, जज्बातियत और कमजोरी की वजह से, माशाल्लाह खवातीन सारी खामोश हैं, उनको अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है घर में रह करके, ज्यादा बोझ की वजह से औरतें जज्बाती होती हैं, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने बनाया है ना, ये जज्बाती बनाया तो अल्लाह ने बनाया ना उनको, और मर्द को जो है वो फीका रूखा बनाया तो अल्लाह ने बनाया, ठीक है ना, कम जज्बात के ऊपर कंट्रोल दिया, उनका दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया, औरत को अल्लाह ताला ने दिमाग अलग किस्म का दिया, उनको अलग किस्म का दिमाग दिया, ठीक है। देखिए नबी के जो अल्लाह ताला ने रोल्स बताए, रोल्स, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ठीक है ना, ये जो चार रोल्स है ना, ये चार रोल्स जो हैं वो औरत अपनी हया, अपने पर्दा, अपने जज्बात, अपने जो है वो दूसरी जिम्मेदारियां जो उसकी अल्लाह ताला ने घर की जिम्मेदारियां लगाई हैं, ठीक है ना, औलाद की जिम्मेदारी लगाई है, और खाली जिम्मेदारी नहीं लगाई, औलाद के दुनिया में आने का अल्लाह ताला ने सबब ही औरत को बनाया, मर्द को तो नहीं बनाया ना, ठीक है ना, तो अब वो औलाद के आने की दुनिया के अंदर जो सबब है और उसकी वजह से उसकी जो सेहत का मामला होता है, उसकी जो फिर उसके बाद उसकी ऐसी उसके ऊपर जो स्टेट्स आती हैं, मर्दों के ऊपर अल्लाह ताला ने वाली स्टेट्स नहीं रखी हैं, तो मर्द ये जो रसूल ने आकर के ये जो जॉब्स करनी होती है ना, यतलू अलैहिम आयाती यानी दावत और तबलीग का काम करना, ठीक है ना, और फिर युज़क्कीहिम लोगों का तज़किया करना यानी उनका रूहानी इलाज करना, ठीक है ना, वो युअल्लिमुहुमुल किताब और किताबों का इल्म पढ़ाना, ठीक है, और फिर जो है वो हिकमत को जो है वो पूरे के पूरे इंसानियत को सिखाना, कि अल्लाह ताला ने जो इतने यानी अहम तरीन भी नहीं बल्कि इतने ज्यादा बोझ वाले काम है, ये बहुत ज्यादा बोझ वाले काम है, ठीक है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जो 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 चीज मर्दों को दी है, फिजिकल भी और उसके अलावा इमोशनल भी, और यानी तो ये सलाहियतें अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है, ठीक है ना, अल्लाह ताला की तकसीम है कि इनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया। मर्द को जो है वो औलाद की दुनिया में लाने का सबब नहीं दिया, उसकी सलाहियतें नहीं दी, उनको जो है ये वाली सलाहियत ही दी, और भी बहुत सारी सलाहियतें, फर्क फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अगर आप टिपिकली नहीं बल्कि अगर आप ट्रेडिशनली और आप इवन माजी में जा करके उम्मत मुस्लिमा में भी देखें ना, तो ना सिर्फ ये कि औरत ने कभी नबुवत का बोझ नहीं उठाया, बल्कि इवन नबियों के जो डायरेक्ट वरसा होते हैं ना, उलमा और मशायख का, ठीक है ना, ये मशायख के सिलसिले भी सिर्फ मर्दों में चले, सिर्फ मर्दों, ठीक है ना, और बड़े उलमा का सिलसिला ये भी सिर्फ मर्दों में चला है। औरतों में एक्सेप्शन जरूर आई हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन भी विद कुयूद आई है, कुयूद यानी विद रिस्ट्रिक्शंस आई है, जैसे कि हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बहुत बड़ी मुहद्दिसा और बहुत जो है ना बड़ी फकीहा और मुफ्तिया, राइट, ये सब कहलाती है ना वो, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस, विद रिस्ट्रिक्शंस, नॉट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अब फकीहा हो गई हैं, अब जो है वो यतुल अलैहिम आयाती का काम भी करना शुरू हो गई, अब यूज़कीहिम का काम भी करना शुरू हो गई, उलमुल किताब का तो काम कर ही रही थी, तो बाकी भी काम करना शुरू हो गई, नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से इवन यानी लोग इससे इख्तलाफ तो करेंगे, लेकिन हम तो कहते हैं, उन्होंने आज भी कहेंगे, कल भी इंशाल्लाह कहेंगे, इवन फिजिकल इलाज मुआवजा, इवन फिजिकल इलाज मुआवजा जो है ना, वो आज के दौर से पहले जो है वो औरतें उसमें नजर नहीं आती, फिजिकल इलाज मुआवजा यानी जिस्मानी इलाज मुआवजा, ठीक है ना। हाँ, असिस्टेंट के तौर पर, नर्स के तौर पर औरतें जरूर होती हैं जिहाद के अंदर, मरहम पट्टी के लिए, ठीक है ना, पानी पिलाने के लिए, और औरतों को डायरेक्ट ज्यादा हैंडल करने के लिए औरतें बतौर नर्स के जरूर नजर आती हैं हमें, लेकिन बतौर डॉक्टर के नहीं नजर आती, ना रूहानी डॉक्टर के तौर पर नजर आती है, ना जिस्मानी डॉक्टर के तौर पर नजर आती है। आजकल तो खैर जिस्मानी डॉक्टर तो क्या, आजकल तो रूहानी डॉक्टर भी औरतें बन गई हैं, पीरनिया जिनको कहते हैं। खैर, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने जमहूर उलमा का ये कौन नकल किया, अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबी रसूल नहीं बनाया, बाज़ उलमा ने चंद औरतों के मुताल्लिक नबी होने का इकरार किया है, बाज़ उलमा ने मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला, देखा हजरत ने रज़ी अल्लाह ताला का इस्तेमाल किया, और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, देखें यहाँ पे हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने भी ईसा अलैहिस्सलाम या उम्मे मरियम उनके लिए तो एक्चुअली नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया, बहरहाल रज़ी अल्लाह तआला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अलैहिस्सलाम भी कहने में कोई ऐसी अकीदे का मसला नहीं है, क्योंकि इन तीनों खातिन के बारे में कुरान करीम में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनसे समझा जाता है कि बहुत खुदाबंदी फरिश्तों ने उनसे कलाम किया और बशारत सुनाई, या खुद उनको वही इलाही से कोई बात मालूम हुई, मगर जमहूर उलमा के नज़दीक इन आयतों से इन तीनों खातिन की बुजुर्गी और अल्लाह ताला के नज़दीक उनका बड़ा दर्जा होना तो साबित होता है, मगर वो फरमाते हैं कि सिर्फ ये अल्फाज उनकी नबूवत व रिसालत के सबूत के लिए काफी नहीं है। ये जो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, जहां पे औरतों को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ठीक है ना, वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है औहा यूही ईहान, औहा यूही ईहान फहुआ मुही, ठीक है ना, ये बाबे इफ़ाल का जो जो सर्फ पढ़े हुए हैं उनको इस खाली बात समझ में आएगी, ये उसका मस्दर है ईहान, ठीक है ना, तो औहा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि वही जो है ना ये अलग है, ये ईहान के मजदर से अलग है, ये वही है, ठीक है ना, तो वही जो है ना ये सिर्फ नबियों के लिए, रिजाल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये शहद की मक्खी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये औरत के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ईहान का लफ्ज जनरलाइज लफ्ज है, जबकि वही का लफ्ज जो है ना ये खास नबियों के लिए इस्तेमाल, कहीं भी ये गैर नबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल, ठीक है। और इसी आयत में लफ्ज अहल कुरा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने रसूल अमूमन शहरों और कस्बों के रहने वालों में भेजते हैं, देहात और जंगल के बाशिंदों में से रसूल नहीं होते, क्योंकि अमूमन देहात और जंगल के बाशिंदे सख्त मिजाज और अक्लो फहम में कामिल नहीं होते, इब्न कसीर व कुर्तुबी वगैरह, ठीक है, तो शहरों के अंदर फिर भी जो है ना वो ज्यादा चांस होता है नबियों की बात के समझने का, और देहात और वहाँ पे चांस और भी कम हो जाता है। आपने क्या मैसेज लिखे वो पढ़ के फिर क्लास खत्म करते हैं कि जैसे कि राबिया बसरिया ना शादी की उन्होंने ना शौहर और औलाद की जिम्मेदारी, लेकिन अलीह में जमीर तो मद के लिए नहीं होगी, अलीह में जमीर हा तो मद के लिए नहीं होगी, नहीं तो अलीह में अलीह हस्सलाम बोल रहा हूँ ना, वो हा अलिफ जो है वो औरत के लिए जमीर होगी, तो अलैहि में तो मर्द के लिए जमीन है, तो ईसा अलैहि सलाम की बात हो रही है यहाँ पे, जो उन्होंने अलैहि लिखा है ना, ईसा अलैहि सलाम के लिए लिखा है, मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए नहीं लिखा, इट इज़ इल्हाम नॉट वही। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, आपसे बहुत माजरत के एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि।